लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आर्थ याचना करते हैं कि विश्व के समस्त राष्ट्र और नागरिक हथियारों के उपयोग को कम कर शांति और अहिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, आज की परिस्थिति और समय में कोई भी माता पिता की एक सामान्य शिकायत यही है कि बच्चे आज्ञा नहीं मानते हैं। अपने संतानों की आज्ञा नहीं सुनने के कारण माता पिता की चिंता और परेशानी आस पड़ोस में देखी जा सकती है। आज्ञा नहीं सुनने के कारण आज हम बहुत से परिवारों को टूटता और बिखरता हुआ पाते हैं। यहाँ मेरे जहन में एक साधारण सा सवाल यह उठता है कि आखिरकार माता पिता स्वयं अपने जन्म दिए बच्चों को क्यों आज्ञा पालन नहीं सिखा पाते हैं? परिवार में बच्चों के बिगड़ने का मुख्य कारण आज क्या है? इसके मंथन पर मैं अपने लिए यही पाता हूँ कि बच्चों को सिखलाने के पहले माता पिता ने स्वयं उन बातों को अपने में नहीं सीखा है जिसे वे अपने संतानों को सिखलाने की चाह रखते हैं। जीवन की उन बातों को उन्होंने अपने में सुना जरूर है, लेकिन सीखते हुए कभी उनका अमल सही रूप में नहीं किया है, अर्थात उन्होंने उन बातों को अपने जीवन का पूर्ण अंग नहीं होने दिया है। अतः वे अपने संतानों को उन बातों का अनुसरण कराने में अयोग्य रहते हैं, क्योंकि साधारण सी बात है, जैसे माता पिता अपने जीवन को जीते हुए उदाहरण प्रस्तुत करते, ठीक उन्हीं बातों को संतान अपने जीवन में उतारते हैं। श्रोताओं, पास्का के छाट में रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमारे लिए आज्ञा पालन की बात कहता है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु के जीवनदायी वचनों को सुने और उन्हें अपने हृदय में संजो कर रखें, जिससे वे हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और परिवार की संतानों के लिए सुंदर और अच्छे जीवन का कारण बन सकें।
यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा।
श्रोताओं, ख्रिस्त के सुमधुर जीवनदायी वचन हमें जीवन की सच्चाई को जानने और समझने में मदद करे, जिससे हम उन सच्चाइयों के अनुरूप अपने जीवन को संचालित कर सकें जो हमारे लिए ईश्वरीय प्रेम और खुशी की अनुभूति लाती है।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
श्रोताओ, प्रेरित चरित से लिए गए आज के पहले पाठ में हम फिलिप को गैर ख्रिस्तियों के बीच यीशु के वचनों को घोषित करते हुए सुनते हैं। गैर ख्रिस्तीय उन वचनों को सुनते और उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके बीच बहुत से चमत्कार होते हैं। यहाँ हमारे लिए इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि समारिया के गैर ख्रिस्तियों ने यीशु ख्रिस्त के वचनों को सुना और उन्हें अपने जीवन में स्वीकार किया, जो उनके लिए जीवन का कारण बनता है। उनके उत्साह और तत्परता को देखकर यरूशलेम से पेत्रुस और पौलुस समारिया उनके बीच जाते और अपने हाथों को उनके ऊपर रखते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और यह हस्तारोपण उन्हें पवित्र आत्मा से अभियंजित करता है। श्रोताओं, पवित्र आत्मा से हमारा अभियंजन हमें अपने जीवन में विभिन्न रूपों में मजबूती प्रदान करता है। पवित्र आत्मा के सानिध्य में हम अपने को विश्वास, भरोसा, प्रेम और जीवन की आशा में प्रगाढ़ होता पाते हैं, क्योंकि वे हमारे लिए अथाह शक्ति के स्रोत हैं। इस तरह ईश्वरीय आत्मा से संचालित हम अपने को उस सत्य से संयुक्त करते हैं, जिसकी चाह हर एक मानव के हृदय में व्याप्त है, और वह सत्य है एक अच्छा और एक सुंदर जीवन की मनोकामना, जो हमें सिर्फ सृजनहार ईश्वर प्रदान करते हैं। इस भांति पवित्र आत्मा के द्वारा अपने को निर्देशित होने देना हमारे अंतःकरण को शुद्ध बनाए रखने में हमारी मदद करता है, क्योंकि वे हमें उसके गहराई में जीवन के रहस्य को प्रकट करते हैं। श्रोताओं, संत पेत्रुस के पहले पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें यीशु मसीह के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा के भाव रखने का आह्वान करता है। यीशु के प्रति हमारी श्रद्धा हमें पुनः अपने में जीवन की अच्छी, सच्ची और उचित बातों को चुनाव करने को मदद करती है, जो हमारे अंतःकरण के पाकमय स्थिति को बयां करती है। श्रोताओ, हमारे अंतःकरण का शुद्ध रहना हमारे लिए इस बात पर निर्भर करता है कि हम ईश्वर के जीवनदायी वचनों को किस रूप में सुनते और कैसे उन्हें अपने जीवन में अमल करते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि यदि तुम मुझे प्रेम करोगे तो मेरी शिक्षा पर चलोगे। यहाँ हमारे लिए पुनः सुनने पर बल दिया गया है। यीशु हमें अपनी शिक्षा को सुनने का आह्वान करते हैं, और यह तब होता है जब हम उन्हें प्रेम करते हैं। हम अपने जीवन में किसी व्यक्ति की बातों को तब सुनते हैं जब हम उस पर विश्वास करते, उसे पसंद करते और उसे प्रेम करते हैं। यीशु के वचनों को सुनने और उन्हें अपने जीवन में जीने के द्वारा हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में एक स्थान देते हैं, जिन्हें उन्होंने हमारे लिए अपने पिता की ओर से अपनी की गई प्रतिज्ञा के अनुरूप भेजा है। यह जीवनदायी आत्मा सदैव हमारे साथ हमारे हृदय के अंतरतम में निवास करते और सत्य से हमें वाकिफ कराते हैं। यीशु इस आत्मा के बारे में कहते हैं कि संसार उन्हें नहीं जानता और नहीं पहचानता है। हम उन्हें जानते और उसका अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका पान हमें बपतिस्मा संस्कार के द्वारा कराया गया है, जो हमें अपने हृदय की गहराई में यीशु ख्रिस्त और पिता ईश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारने को प्रेरित करता है। श्रोताओं, सुनना और सुनने के अनुरूप अपने जीवन के कार्यों को करना किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारी श्रद्धा और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने हितैषियों और अपने बड़े जनों को सुनना उन्हें श्रद्धा के भाव प्रकट करना है, जिसमें एक अघोषित प्रेम का सम्मिश्रण है, और ऐसा करने के द्वारा हम त्रित्वमय ईश्वर के लिए अपने हृदय द्वार को खोलते हैं, जो हम में निवास करने की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा हमारे लिए अपने प्रिय जनों के द्वारा आती है। आइए हम पवित्र आत्मा हमारे सहायक से निवेदन करें कि वे हमें नम्रता और दीनता के पाठ पढ़ाएं, जिससे हम अपने को ईश्वरीय वचन के प्रति खुला रख सकें, जो हमारे लिए न केवल धर्म ग्रंथ में बल्कि अपने बड़े जनों के रूप में हम सबों के लिए आता है।
तू ही करुणा मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु, तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही करुणा मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु, तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु, तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के संत पापा पॉल षष्ठम सभागार में कैथोलिक महिला संगठनों के विश्व संघ के करीब 1500 महिलाओं से मुलाकात की। संत पापा ने विश्व के विभिन्न देशों से आई महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों का अभिवादन किया। कैथोलिक महिला संगठनों का विश्व संघ 14 से 20 मई को असीसी में अपनी महासभा आयोजित करने वाली है। संत पापा ने उनसे कहा कि यहाँ उनकी उपस्थिति अपने आप को महासभा के लिए तैयार करने का समय है, जो अगले सप्ताह असीसी में आयोजित किया जाएगा। संत पापा ने कहा कि यह उनके मिशनरी आवेग को नवीनीकृत करने का एक अवसर है। संघ के संस्थापकों द्वारा प्रेरित मूल सिद्धांतों का पालन करते हुए वे दुनिया को खुली आंखों और दिल से देखें और उन महिलाओं का विलाप सुने जो अन्याय, परित्याग, भेदभाव, गरीबी का शिकार हैं। महिलाओं की विश्व वेदशाला जिसे आपने लॉन्च किया है, वह आपको जरूरतों की पहचान करने के लिए संकेत देगी और इस प्रकार भला समारी बनने में आप सक्षम होंगी। चूंकि कलीसिया शनिवार को फातिमा की माता मरियम का पर्व मनाती है, इसलिए संत पापा फ्रांसिस ने इन महिलाओं से आग्रह किया कि वे कुंवारी मरियम को जीवन के आदर्श के रूप में देखें। वह अपने मिशन को पूरी तरह से जीती हैं, दुनिया को मातृत्व का उपहार प्रदान करती हैं और कलीसिया में अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए अपने काम को पूरा करती हैं। संत पापा ने कहा, माता मरिया आपको जीवन उत्पन्न करना और हमेशा इसकी रक्षा करना, कोमलता और करुणा से दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना सिखाती हैं। संत पापा ने उनसे तीन शब्दों मन, हृदय और हाथ को जोड़ने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि महिलाओं में यह सोचने की क्षमता है कि वे क्या महसूस करती हैं, वे क्या सोचती हैं और क्या करती हैं, और वे जो महसूस करती हैं और सोचती हैं उसे कहने की क्षमता है। मैं आपको दूसरों की सेवा में इस संवेदनशीलता की पेशकश जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। संत पापा ने कहा कि जीवन की परिपूर्णता मसीह के साथ एकता में पाई जाती है। ख्रिस्त के साथ मिलन को कलीसिया के साथ एकता और दूसरों की सेवा के माध्यम से महिलाओं के दैनिक जीवन में प्रकट होना चाहिए। आपको अपने काम में प्रार्थना करनी है और आपने प्रार्थना में जो अनुभव किया है उसे अभ्यास में लाना चाहिए, ताकि कलीसिया के मिशन के साथ तालमेल बैठाया जा सके। अंत में संत पापा फ्रांसिस ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपने सुसमाचार प्रचार गतिविधियों में आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि वे आत्मा की आंतरिक आवाज का पालन करती हैं। आज कैथोलिक कलीसिया फातिमा की माता मरिया का पर्व मनाती है। इस दिन संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर सभी विश्वासियों से माता मरिया की मध्यस्थता से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने हेतु प्रेरित किया। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, फातिमा के माता मरिया, यीशु की माँ और हमारी माँ, हमें मुलाकात और संवाद के रास्ते बनाने में मदद करें जो शांति की ओर ले जाए, और हमें बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर चलने का साहस दें। और संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 13 मई को मुंबई महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष आल्विन डिसिल्वा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सहायक धर्माध्यक्ष आल्विन डिसिल्वा ने सेवानिवृत्ति की उम्र 75 वर्ष पूरे हो जाने की वजह से अपने पदभार से इस्तीफा दे दिया है। और शनिवार 13 मई को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में संत पापा फ्रांसिस ने बांग्लादेश के राजदूत श्री मुहम्मद सुफीउर रहमान, गाम्बिया के राजदूत श्रीमती डॉक्टर फतव बोम बसौदा, आइसलैंड के राजदूत श्री आइनर गुनारसन, कजाकिस्तान के राजदूत श्री कैरत सरजानोव और सीरिया के राजदूत श्री लुए फालोह से मुलाकात की और उनका प्रत्यय पत्र खुशी से स्वीकार किया और संबंधित राज्यों के प्रमुखों को अपना अभिवादन भेजा। संत पापा ने विशेष रूप से सीरिया के लोगों को याद किया जो सशस्त्र संघर्ष के कारण जारी पीड़ा के बीच हाल के हिंसक भूकंप से अभी भी उबर रहे हैं। उधर वाटिकन के विदेश सचिव ने कारितास इंटरनेशनल महासभा को संबोधित किया और परिसंघ की मानवीय पहुंच की प्रशंसा करते हुए शांति के लिए काम करना जारी रखने का आग्रह किया। रोम में 11 से 16 मई तक कारितास इंटरनेशनल की महासभा जारी है। महाधर्माध्यक्ष पोल गल्लाघेर ने शुक्रवार को कारितास इंटरनेशनल महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि कारितास इंटरनेशनल का मानवीय मिशन कलीसिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारितास इंटरनेशनल 160 से अधिक विभिन्न कलीसिया संचालित गैर लाभकारी संगठनों का एक संघ है। महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने कलीसिया के लिए कारितास के काम की केंद्रीयता पर विचार करते हुए अपने संदेश की शुरुआत की। दान वास्तव में कलीसिया के जीवन का सार है। उन्होंने इसी विषय पर संत पापा फ्रांसिस के शब्दों को उद्धृत किया। 2016 में संत पापा ने कहा कि कारितास का मिशन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हर व्यक्ति को पिता ईश्वर द्वारा प्यार किए जाने का एहसास करा सकता है, शब्दों से नहीं बल्कि ठोस प्रेम से। इसके बाद महाधर्माध्यक्ष ने इस संघ की कार्य की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले यह भौतिक और सामाजिक सहायता से परे है, इसका संबंध पूरे व्यक्ति से है। यह लोगों को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास करता है और दूसरी बात, यह एक तरफा नहीं है बल्कि सहायता प्राप्त लोगों के साथ एक भ्रातृत्वपूर्ण मुलाकात है। महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने कहा, इस महत्वपूर्ण सभा को मेरे अंतिम संबोधन के बाद से दुनिया अभूतपूर्व संकटों से बुरी तरह प्रभावित हुई है। महामारी, जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदा, बढ़ती खाद्य असुरक्षा और भूख, नए संघर्ष, साथ ही राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा। इस गंभीर संदर्भ को देखते हुए भाईचारे की श्रृंखला कारितास द्वारा प्रतिनिधित्व 200 से अधिक देशों में स्थित संगठनों का यह संघ पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने कहा कि शांति के लिए संगठन के कार्य के बारे में यह भी सच है जिसके प्रचार को उन्होंने कलीसिया के प्राथमिक कार्य के रूप में पहचाना। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।